بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پہ۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahartv.ir اور ای میل ایڈریس ہے andaz_jahan@sahartv.ir۔ اور انداز جہاں میں آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے یوکرین کا بحران، روس سے کریمیا کا الحاق اور مغرب کا رد عمل۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ ناظرین، یوکرین کے بحران اور روس سے کریمیا کے الحاق کے مسئلے میں روس اور مغرب کے درمیان کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ہیگ میں ایٹمی سیکیورٹی کانفرنس پر بھی یوکرین کا بحران اور روس سے کریمیا کے الحاق کا معاملہ چھایا رہا۔ امریکہ اور یورپی یونین نے جوہری سیکیورٹی سے زیادہ یوکرین کے بحران اور روس سے کریمیا کے الحاق کے معاملے کو اہمیت دی، اور دنیا کے صحافتی اور سیاسی حلقوں کی نگاہیں بھی ایٹمی سیکیورٹی کانفرنس سے زیادہ اس موقع پر ہونے والے 7 بڑے صنعتی ممالک کے سربراہوں کی میٹنگ پر مرکوز رہیں۔ ہیگ میں 7 بڑے صنعتی ملکوں کے سربراہوں کی میٹنگ کے بعد ایک بیان جاری کیا گیا، جس میں روس کو ایک بار پھر دھمکی دی گئی ہے کہ اگر اس نے کریمیا کے بارے میں اپنے موقف پر نظر ثانی نہ کی تو اسے سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میٹنگ میں امریکہ، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی، کینیڈا اور جاپان کے سربراہوں کے علاوہ یورپی یونین کے اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھے۔ بیان میں اعلان کیا گیا ہے کہ سوچی میں ہونے والا 8 صنعتی ملکوں کا سربراہی اجلاس منسوخ کر دیا گیا ہے، اور اب یہ اجلاس سوچی کے بجائے برسلز میں ہوگا، جس میں روس شرکت نہیں کر سکے گا۔ ادھر 5 نئی صنعتی طاقتوں برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ برکس نے روس پر پابندیاں لگانے اور اس کو گھیرنے کی مغرب کی کوششوں کی مذمت کی ہے۔ برکس کے وزرائے خارجہ نے ایک بیان جاری کر کے کہا ہے کہ ملکوں پر پابندیاں لگانا اقوام متحدہ کے منشور کے خلاف ہے۔ البتہ مغرب اور اس کے اتحادیوں کا رد عمل کسی حد تک قابل فہم ہے، کیونکہ امریکہ اور نیٹو یوکرین میں اپنی مرضی کی حکومت لا کے روس کے گرد گھیرا تنگ کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے یانکوویچ کی حکومت کے خلاف پرتشدد تحریک کو مہمیز کیا تھا۔ لیکن روس کے بروقت رد عمل اور کریمیا کے روس میں شامل ہونے سے انہیں اپنے منصوبے خطرے میں پڑتے نظر آنے لگے۔ یوکرین میں اپنی مرضی کی تبدیلی لانے کے لیے امریکہ اور یورپ نے کافی سرمایہ کاری کی ہے۔ چنانچہ امریکہ کے نائب وزیر خارجہ وکٹوریا نولینڈ حال ہی میں اعلان کر چکی ہیں کہ امریکہ نے یوکرین میں تبدیلی لانے کے لیے $5 ارب کی رقم خرچ کی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ کریمیا سے یوکرین کی افواج مکمل طور پر نکل چکی ہیں۔ یوکرین کے تمام فوجی اڈے روسی افواج کے قبضے میں آ چکے ہیں۔ اسی کے ساتھ یوکرین کے تمام سرکاری دفاتر اور پولیس کے محکمے سمیت سیکیورٹی کے سبھی اداروں میں روس کے قوانین اور ضوابط کے نفاذ کے احکامات صادر کر دیے گئے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم پہلے روس سے کریمیا کے الحاق پر مغرب کے اتنے سخت رد عمل کے اسباب پر گفتگو کریں گے، گروپ 8 سے روس کے نکل جانے کے اثرات کا جائزہ لیں گے، روس کے خلاف امریکہ، یورپ اور نیٹو کے اقدامات اور ان کی پابندیوں کے قانونی جواز پر گفتگو ہوگی، اور اسی کے ساتھ اس بات کا بھی جائزہ لیا جائے گا کہ یوکرین میں ایسا کیا ہے جس کے لیے امریکہ اور یورپ سرد جنگ کے حالات پیدا کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ لیکن پہلے اس حوالے سے ہماری رپورٹ۔ ناظرین، ہمارے آج کے پروگرام میں دہلی اسٹوڈیو سے شرکت کریں گے ہندوستان کے سابق خارجہ سیکرٹری اور اسٹریٹجک امور کے ماہر مچکن دوبے۔ لندن اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے بر صغیر کے ممتاز دانشور اور سینئر تجزیہ نگار ڈاکٹر قیصر امام، اور اسلام آباد سے اسکائپ کے ذریعے پروگرام میں شامل کیا جائے گا پاکستان کے سینئر تجزیہ نگار فوزیہ شاہد کو۔ تو چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں ڈاکٹر قیصر امام صاحب موجود ہیں۔ قیصر امام صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام۔
جناب، ہیگ میں ایٹمی سیکیورٹی کانفرنس پر بھی یوکرین کا بحران اس طرح سایہ فگن ہے کہ اصل موضوع پیچھے چلا گیا ہے، اور روس کے خلاف امریکہ اور اس کے یورپی اتحادیوں کا فیصلہ موضوع بحث بنا ہوا ہے۔ اس بارے میں آپ کا تجزیہ کیا ہے؟
دیکھیں، ہیگ میں جو کچھ ہو رہا ہے، واقعی آپ کی بات صحیح ہے کہ جو اصل معاملہ تھا اس کو تو پسے پش ڈال دیا گیا، اور سب سے زیادہ زور اس بات پر دیا گیا امریکہ کی طرف سے कि इसको रशिया को तो इसमें से खारिज कर दिया जाए, जो G8 पहले कहलाता था अब उसको G7 कर दिया जाए और रशिया को फारिग कर दिया जाए। ये ऐसा लगता है जैसे वो कोई बाकायदा तंजीम तो है नहीं, कोई इस किस्म, वो तो जस्ट एक क्लब है इस किस्म का जो कभी कभी आपस में मुलाकात कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने इसको भी एक अहम मौजू बना दिया है कि इसको निकाल दिया गया है और अब जो नई कॉन्फ्रेंस होने वाली थी सूची में उसमें ये लोग शामिल नहीं होंगे, अब वो कॉन्फ्रेंस ब्रसल्स में होगी। मेरा ख्याल है कि ये सारी बात जो है ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पर सारा जोर दिया गया है एक में कि रशिया के खिलाफ किस किस्म की पाबंदियां जो हैं वो नाफज की जा सकती हैं। यहां तक अमेरिका ने कह दिया है, बरतानिया को भी और फ्रांस जर्मनी को भी, कि अगर मालियाती इदारे जो हैं इन मुल्कों के, पेरिस और रोम और जर्मनी के, बर्लिन और इसमें बरतानिया में, लंदन के, अगर वो खुद मजरूह होते हैं, अगर वो मुतासर होते हैं, फिर भी वो पाबंदियां सख्त की जाएं, और ये बात बिल्कुल तय है कि अगर रूस के खिलाफ वो पाबंदियां आयद करते हैं जिस किस्म की वो बातें कर रहे हैं, तो खुद मगरबी जो यूरोप है इसके मुल्कों में भी उनका असर जो है वो बहुत सख्त होगा। वहां मालियाती इदारे जो हैं वो बहुत मुतासर होंगे और उनकी तजारत जो है वो बहुत मुतासर होगी, लेकिन इसके बावजूद अमरीका उनको प्रेस कर रहा है कि भी आप जरूर इस किस्म की पाबंदियां जो हैं वो सख्त करें। मैं समझता हूं ये पाबंदियां जो हैं ये बड़ी हद तक खुद इन लोगों के खिलाफ भी जा सकती हैं, और दूसरी तरफ बहुत से ऐसे ममालिक हैं जो इन पाबंदियों को कबूल नहीं करेंगे। चाइना की बातचीत हो रही है रशिया के साथ गैस की खरीदारी के सिलसिले में, जाहिर है कि चाइना तो इस किस्म की पाबंदियां कबूल नहीं करेगा। यही सूरत हाल इंडिया की, ईरान की और कई दूसरे मुल्कों की होगी। सो इस सूरत में मैं नहीं समझता कि ये पाबंदियां जो हेग में जिनको तसनीफ किया जा रहा है, मैं नहीं समझता कि इनका कोई असर जो है रूस पर बहुत ज्यादा होगा। इससे बहुत ज्यादा मुतासर खुद मगरबी यूरोप होगा, जो गैस के सिलसिले में तो कम से कम रूस के बगैर रह ही नहीं सकता। सो मैं नहीं समझता कि ये बातें जो है इस किस्म की वो कामयाब होंगी रूस के खिलाफ।
जी कैसर इमाम साहब, रूस को G8 से निकाल देने के बाद G8 की हैसियत क्या रहेगी?
मैं समझता हूं कि रूस और एक मुल्क ऐसा है जिसकी इकोनॉमी और जिसकी से जो है वो एक खास यानी जो सोच है उसमें अलग थलग है मगरबी मुल्कों से, लेकिन अगर उसको निकाल दिया जाए तो मैं नहीं समझता कि G8 या G7 जो है इसमें कोई कुछ रह जाएगा, क्योंकि दूसरी तरफ से दूसरा मौकफ सुनने वाला तो कोई रहेगा ही नहीं, तो फिर बात क्या हुई।
जी अच्छा कैसर इमाम साहब, ब्रिक्स ये 5 सनती मुल्कों जो नए सनती ममालिक हैं इनकी तंजीम है, इसके वजराए खारजा का बयान सामने आया है और इसके वजराए खारजा ने रूस के खिलाफ मगरिब के फैसलों की मजम्मत की है। मेरा सवाल यह है कि रूस के ग्रुप 8 से निकल जाने के बाद ब्रिक्स पर क्या असर पड़ेगा इसका?
देखिए असल बात यह है कि पाबंदियां, पहली चीज तो यह है कि कानून के मुताबिक ये पाबंदियां जायज नहीं है।
जी
इंटरनेशनल लॉ में इस किस्म की पाबंदियों की कोई गुंजाइश नहीं होती, कोई मुल्क किसी के खिलाफ नहीं लगा सकता। दुनिया में तजारत जो है, मालियात जो है, वो पहले से ज्यादा आजाद हो रही है, लेकिन इस आजादी पर ये जो कदगन है ये गलत है, नाजायज है, और जाहिर है कि इसकी हर वो मुल्क मजम्मत करेगा, क्योंकि आजकल हर मुल्क जो है वो दूसरे मुल्क से नथी है, जुड़ा हुआ है इकोनॉमी की रूह से, सियासत की रूह से और दूसरे कई मामलात में। अगर आप पाबंदियां लगाते हैं तो उनसे मुतासर आप खुद भी होते हैं, इसलिए ये बात जो है वो काबिले मजम्मत है और बहुत से मुल्क उसकी मजम्मत कर रहे हैं।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, और नाज़रीन फौजिया शाहिद से स्काइप के ज़रिए रबता बरकरार नहीं हो सका है, टेलीफोन लाइन के ज़रिए उनसे रबता बरकरार किया गया है, पाकिस्तान की सीनियर तजिया निगार फौजिया शाहिद। फौजिया शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
करीमिया से रूस के इलहाक के बाद मगरिब और रूस के दरमियान कशीदगी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, यहाँ तक कि हेग में जो एटमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है उसके मौके पर असल मौजू तो पसे पुश्त चला गया है, मगरिब और रूस की कशीदगी उभर कर सामने आ गई है और दुनिया की निगाहें सहाफती और सियासी हलकों की ज़्यादा कवरेज जो ज़रा इबलाग आम्मा ने दी है वो एटमी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा 7 बड़े सनती मुल्कों के इजलास को दी है जो ज़ैली इजलास है इस कॉन्फ्रेंस के मौके पर। क्या तज़िया है आपका इस बारे में?
देखिए, सबसे पहले तो मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि पिछली जो 2 दहाइयाँ गुजरी हैं और जिसमें एक यूनिपोलर वर्ल्ड हमारे सामने आई और जिसमें एक मुल्क ने अपनी मनमानी करते हुए पूरी दुनिया को इशारों पर नचाने की जो कोशिश की, मेरा ख्याल है कि वो दौर जो है, वो पीरियड जो है, अब वो ओवर हो गया है और बहुत हो गया। 1991 के बाद से पूरी दुनिया जो ये सूरत हाल को देख रही थी, चाहे हम इराक को देख रहे थे, चाहे हम ईरान पे पाबंदियों को देखते हैं, चाहे हम सीरिया को देखें, दुनिया इवन हम अपने अफगानिस्तान को देखें, कहीं भी कोई इलाका ऐसा नहीं है कि उस यूनिपोलर वर्ल्ड की जो एक दंदनाती हुई कुव्वत थी उसमें अपनी मर्जी के फैसले करवाने के लिए इकदाम ना किए। अब अगर हम तारीख का ही मताला करें तो मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि ये एक ऐसा कोई भी पीरियड नहीं होता कि कोई भी एक ताकत जो है वो मुस्तकिल अपनी मनमानी करती चली जाए और बाकी अकवाम जो है वो उस पर खामोशी इख्तियार करें। अब ये जो क्रीमिया का वाक्या हुआ है, ये एक दफा फिर ये तो मैं नहीं कहूंगी कि बिल्कुल सोवियत यूनियन की तरह कोई बहुत बड़ी ताकत सामने आ रही है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लग रहा है कि फिर एक दफा जो है एक ताकत बनने जा रही है जो उसी यूनिपोलर वर्ल्ड को चैलेंज करेगी और वो चैलेंज का एक पहला जो है इब्तदा उसकी हो गई है और उसके बाद आगे उसके साथ कौन सी कुव्वतें मिलती हैं, कौन से ममालिक मिलते हैं, दूसरे कहाँ तक चैलेंज होता है, ये एक वाज़े तौर पर अब वो एक मगरिब और मशरिक की कह लीजिए या वो एक आगाज मुझे दिखाई देता है। और मैं ये समझती हूँ कि पूरी एक सदी के बाद जो 1911 से 1914 के दरमियान की जो सूरत हाल थी, अब 2014 में हमें उसी तकरीबन इलाके से इब्तदा होती दिखाई दे रही है। वक्त जरूर लगता है किसी भी आगे फैसले पे अमल होते हुए, लेकिन ये है कि एक मरतबा फिर उसने चैलेंज कर दिया है। अब आप ये देखें कि अभी जिस तरह आप बात कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंस के हवाले से बात कर रहे हैं, मगरिब को यकीनन इस वक्त एक सेटबैक जरूर हुआ है क्योंकि मगरिब एक तवील अरसे से जिसने कैपिटलिज्म के नाम पे मुकम्मल तौर पे अपनी तमाम आंखें बंद करते हुए अमेरिका की पॉलिसी को सपोर्ट किया और उसके पीछे चले गए, सब जानते हैं कि उनकी मईशतों को कितना नुकसान हो चुका है, लेकिन चूंकि वो अमेरिका के साथ उन्होंने साथ दिया, हर एक बुराई में साथ दिया, अफगानिस्तान में नेटो फोर्सेस जो है वहां मौजूद है अमेरिका के साथ देते हुए, इसी तरह अगर शाम को देखें तो किस तरह साथ दिया, तो ये एक उनको बहुत बड़ा सेटबैक जरूर मिला है। और यकीनन इस वक्त जिनके साथ ही एक वाकया है, वहां अगर सोवियत यूनियन एक उसने उसकी वहां अफवाज जाके या उसके एक बाकायदा एक उसको कब्जा कह लें, कब्जा तो मैं खैर लफ्ज जो है वो नेगेटिव सेंस में आ जाता है, लेकिन वहां उन्होंने जो ओवरकम कर लिया है तो ये एक उनको सेटबैक तो है। अब चाहे वो आप G8 ममालिक से उसको निकालें, अब आप ये इस किस्म वो हरबे हैं जो मैं ये समझती हूँ कि इंतहाई उजलत में किए जा रहे हैं और इसका जो है वो ज्यादा नुकसान होगा। अगर ये समझता है कि सोवियत रूस को G8 से निकाल के कोई इनको हासिल होगा, मैं ये समझती हूँ कि इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा और आने वाले वक्त में ये जो एक तरीका बना लिया है कि जिसने चाहा और वो अपनी पाबंदियां इक्तसादी लगा दी, किसी से निकाल दिया, किसी फोरम से निकाल दिया, ये अब रवायत जो है ना आहिस्ता आहिस्ता खत्म होगी। और मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त ये रूस के साथ वो कुवतें जो एक तवील अरसे से डिप्राइव्ड हैं, जो एक इसी यूनिपोलर वर्ल्ड की जो निशाना बनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ खड़ी होंगी और शायद माजी में जो है सोवियत यूनियन के साथ इतनी ताकत नहीं खड़ी हुई थी जो अब शायद मुझे दिखाई देता है, क्योंकि अमेरिका ने जो मनमानियां की हैं अब वो कुवतें मुझे वहां दिखाई देती हैं और ये G8 से निकालना या उसको किसी तरह टारगेट करना, ये उसके लिए एक आने वाले वक्त वक्त में बहुत बड़ा मुझे लगता है चैलेंज बनेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें जो इस इलाके में दिखाई देता है वो रूस के साथ हमें चीन भी काफी हद तक करीब दिखाई देता है, और वो भी चीन भी समझता है कि एक जिस तरह एक हुक्मरानी रही, एक दुनिया की दुनिया पे हुक्मरानी जैसे कुवत की गई, उसने इस दुनिया को बिल्कुल अनबैलेंस कर दिया है। और वो छोटे ममालिक की भी जो है एक रिस्पेक्ट जो इज्जत नहीं रही। आप तो खुद ईरान की जब हम बात करते हैं तो तवील अरसे से उसने जो एक इक्तसादी पाबंदियों को झीला है, और जरा सी बात पे पाकिस्तान भी इस इक्तसादी पाबंदियों का शिकार हो चुका है। तो किसी की मईशत को नुकसान पहुंचाना, किसी के मुल्क को उसको किसी ताकत के जोर पर नुकसान पहुंचाना, ये जो एक रवायात बन गई थी, मेरा ख्याल है कि आने वाले वक्त में इसको यकीनन खात्मा होगा। और चूंकि जर्ब पड़ रही है यूरोप पे और अमेरिका के कुवत पे, तो यकीनन उनका एक रिएक्शन जो है वो सामने आ रहा है। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया, लाइन पर रहिएगा। और नाज़रीन चलते हैं दिल्ली स्टूडियो, जहां हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक उमूर के माहिर और साबिक खारजा सेक्रेटरी मुचकुंद दुबे साहब मौजूद हैं। दुबे साहब, दुबे साहब आदाब अर्ज है जी। दुबे साहब से अभी रابطہ बरकरार होने में कुछ प्रॉब्लम है जी। जी दुबे साहब आदाब अर्ज है।
अब
दुबे साहब, रूस और मगरिब के दरमियान जो चपकलिश चल रही है, इसके तहत सात बड़े सनती मुल्कों ने जो फैसला किया है रूस को अपने क्लब से बाहर करने का, कि G8 से उन्होंने बाहर कर दिया, और ये ऐलान किया है कि सूची इजलास मंसूख कर दिया गया है और सूची के बजाय ब्रसेल्स में इजलास होगा जिसमें रूस शिरकत नहीं कर सकेगा। इसी के साथ उन्होंने रूस को सख्त तरीन धमकियाँ भी दी हैं कि सख्त तरीन पाबंदी लगाई जाएगी जिससे रूस की मईशत पे बहुत ही गहरा असर पड़ेगा। तो आप क्या समझते हैं कि ये मगरिब, अमरीका और यूरोप इस तरह के हरबों से रूस को झुकाने में कामयाब हो सकेंगे?
मेरा ये बिल्कुल पक्का ख्याल है कि इसमें उनको कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि रूस ने जो कदम उठाया है वो उसको अपने मुल्क के हिफाजत के लिए और अपने और जो उनके इंटरेस्ट हैं उसकी हिफाजत के लिए बहुत ही ज़रूरी समझते हैं। और इसके पीछे उनको अपने पार्लियामेंट का सपोर्ट है, अपने आवाम का सपोर्ट है। और मैं सोचता हूँ कि रूस के जितने इंटरेस्ट वहाँ दांव पर लगे हुए हैं उनको नज़र में रखते हुए मुझे नहीं लगता है कि उनके सामने कोई दूसरा चारा था, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कानून के लिहाज से ठीक हो या गलत हो, लेकिन उनको इसके अलावा कोई चारा नहीं था और उसको वो सहेंगे। इसके चलते उन्हें कितनी भी परेशानी उठानी पड़ेगी। लेकिन हम जानते हैं कि सैंक्शंस जो होते हैं, जो तजुर्बा है उसके मुताबिक वो कभी भी काम कारगर नहीं होते हैं। जो सैंक्शन डालता है उसके इंटरेस्ट की भी खामी होती है। अगर आपने हमारे व्यापार को रोक दिया तो आप भी मेरे साथ व्यापार कर रहे हैं, आपका भी एक्सपोर्ट मेरे मुल्क में आ रहा है तो वो भी बंद होगा। तीसरी बात यह है कि जो G7 ने रूस को जो एक अपना मेंबर बनाया G8 करके, तो वो उसके पीछे उनकी अपनी भी मजबूरियां थी, क्योंकि आजकल जो दुनिया में मसले हैं, इन्वायरमेंट के मसले हैं, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिस्टम को सुधारने के मसले हैं और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल एक्साद का और भी जो मसले दुनिया के सामने आए हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस जो हुआ है, इन सबों को हल करने के लिए रूस का एक हिस्सा लेना बिल्कुल आवश्यक समझा गया, तभी उनको लाया गया और अभी भी वो आवश्यक है। और उनको निकाल के वो अपना कोई फायदा करने वाले नहीं हैं। और मैं ये भी समझता हूँ कि उन्होंने जो ये कदम उठाए हैं उसके बहुत से लूप होल्स होते हैं, जिस मुल्क के खिलाफ इस तरह के शिकंजे लगाए जाते हैं वो मुल्क कोई ना कोई रास्ता ढूंढ निकालते हैं अपने इंटरेस्ट की हिफाजत करने के लिए। और रूस एक बड़ा मुल्क है, उसके पास भी बहुत रिसोर्सेस हैं, और मैं नहीं सोचता हूँ कि इससे रूस के ऊपर एक बहुत दायमी या बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा दुनिया में जो और मसले हैं जिसमें कि लड़ाई हो सकती है, जिसमें कि ये पीस और वार का सवाल उठता है, लोगों की तबाही का सवाल उठता है, उनके सुलझाने के लिए भी, उनके हल के लिए भी रूस की मदद बहुत ज़रूरी है। पश्चिमी मगरब देशों को, जैसे कि सीरिया में हुआ या और भी जगहों में हुआ, और रूस उनके साथ मदद कर रहा था, तो इन सबों को रोकना न तो उन मुल्कों के इंटरेस्ट में है और न तो जो एक ह्यूमैनिटी की जो कौम है उसके इंटरेस्ट में है।
जी बहुत बहुत शुक्रिया कैसर इमाम साहब। जनाब ग्रुप आठ से रूस के निकल जाने के बाद ब्रिक्स के, जिसका खुद रूस भी रुकन है, चीन इसका एक रुकन है, इसके और ज्यादा फाल और मजबूत होने का कितना इम्कान है? कैसर इमाम साहब, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंची हो।
जी थोड़ी थोड़ी सी रह गई आधी
जी आवाज। मेरा सवाल यह था कि रूस को तो ग्रुप एट से निकाल दिया गया है, G8 से निकाल दिया गया है, एक और सनती मुल्कों का जो ग्रुप है ब्रिक्स, जिसमें हिंदुस्तान है, रूस है, चीन है, जुनूबी अफ्रीका है, ब्राज़ील है, खुद रूस भी इसका एक रुकन है और फाल रुकन है, तो G8 से रूस के निकलने के बाद इस ग्रुप के ज्यादा सरगर्म और मजबूत होने का कितना इम्कान है?
मैं समझता हूं कि ये वाकईतन आपकी सोच बहुत सही है, ये ग्रुप जो है ये पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएगा, इसलिए कि बहुत सी बातें ऐसी होंगी जब आप पाबंदियां लगा रहे हैं G7 वाले रूस के खिलाफ, तो इसका लाजमी नतीजा ये होगा कि इस जो ग्रुप 5 है उसमें बहुत से ऐसे मुल्क शामिल हैं जो इन पाबंदियों के पहले से ही खिलाफ हैं, रूस के खिलाफ ये पाबंदियां नहीं चाहते, जैसे इंडिया की मिसाल है, चाइना की मिसाल है। सो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से ये ग्रुप जो है ये पहले से मजबूत होगा, इसकी से जो है ये इंटरनेशनल मार्केट में, इंटरनेशनल अफेयर्स में ज्यादा होगी। सो मेरे ख्याल में ये पाबंदियां जो हैं वो खुद G8 के खिलाफ जा रही हैं, G7 के खिलाफ जा रही हैं, G5 जो है वो इसमें ज्यादा मजबूत तर हो जाएगा।
जी फौजिया शाह साहब आप क्या कहती हैं?
जैसे मैंने पहले भी कहा, मैं जाती तौर पे समझती हूँ कि इस वक्त पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा अहम उसको टर्निंग पॉइंट कह लीजिए या बहुत अहम मकाम आ गया है, और अहम मकाम ये है कि उन्हें फैसला ये करना है।
जी दुबे साहब, जनाब जहां तक ये क्रीमिया का रूस से इल्हाक का मसला है, तो दोनों दावा कर रहे हैं, रूस का कहना यह है कि यह बैन अल-अक़वामी क़वानीन के मुताबिक है और अक़वामे मुत्तहिदा के मंशूर की भी इसमें खिलाफ वर्जी नहीं होती है, अमरीका और उसके इत्तेहादियों का कहना है कि यह बैन अल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है, लेकिन एक बात जो रूस कहता है उसमें ज़्यादा दम नज़र आता है, रूस का कहना है कि जिस तरह कोसोवो के लोगों ने 2008 में एक रेफरेंडम के जरिए सर्बिया से अलहदगी अख्तियार की, उसी तरह क्रीमिया के अवाम ने यूक्रेन से अलग होने और रूस में शामिल होने का फैसला किया। इसके अलावा अर्जेंटीना की सदर ने कहा है, वो बात भी काबिल गौर है, कि फॉकलैंड के रेफरेंडम को सही करार देने वाले क्रीमिया के रेफरेंडम को गलत कैसे करार दे रहे हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
देखिए पहले मैं दो लफ्ज आपको ब्रिक्स के बारे में कह दूं, अगर आपकी इजाजत हो।
जी फरमाएं।
मैं राजी हूं जो जिन्होंने पहले कहा है कि इससे ब्रिक्स को और मजबूत करने की ख्वाहिश होगी
जी,
और कुछ हद तक मजबूत होगा, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ब्रिक्स की अपनी लिमिटेशंस हैं
जी,
और वो लिमिटेशंस हैं दो। एक ये है कि वसाइल की कमी है उनको, अगर वो अलग से किसी के इक्तसादी मसलों को हल करना चाहें तो उसके लिए जिस स्केल पर वसाइल की ज़रूरत है वो उसको इकट्ठा कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं, इसमें संदेह है। और दूसरी उसकी कमजोरी यह है कि कुछ मामलों में उनमें आपस में विरोध है
जी,
और उसको वो किस तरह से हल करेंगे ये बात है। बस मैं इसको यही छोड़ देता हूँ, आपके सवाल पर मैं आता हूँ। मेरा ख्याल है कि जो सही अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल लॉ है
जी,
जो कि यूएन चार्टर में है, उसके मुताबिक किसी भी सॉवरेन टेरिटरी का एक हिस्सा चाहे तो रिफ्रेंडम हो या चाहे जो ही उपाय हो उसके मुताबिक अलग होकर दूसरे मुल्क में नहीं मिल सकता है। लेकिन हाल में ये जो कानून है इससे डिपार्चर हुए हैं, इससे लोग आगे हटे हैं, और वो उसका एक बहुत बड़ा नमूना था कोसोवो का
जी।
और कोसोवो में मगरेब के देशों ने यही कहा था कि एक सॉवरेन स्टेट के टेरिटरी को भी ये अधिकार है कि वो रेफरेंडम के द्वारा इससे निकल जाए, जो कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है, जैसा अंतर्राष्ट्रीय कानून अभी है उसके खिलाफ है
जी।
तो रूस उसी को दुहाई दे रहा है, और रूस ये कह रहा है कि अगर हाल के वक्त में कई जगह पर मगरेब देशों के उस्काने पर बाउंड्री बदले हैं, एक देश के एक टेरिटरी अलग होकर के दूसरा देश बना है उनकी इच्छा के मुताबिक, उनके ख्वाहिश के मुताबिक, जो कि ख्वाहिश किसी भी फॉर्म में उसको जाहिर किया गया है चाहे वो रेफरेंडम हो, तो क्रीमिया में वो क्यों नहीं हो सकता है। रूस ने ये पोजिशन लिया है, और अगर आप मगरब देशों के करतूत को देखें, हाल के घटनाओं को देखें, तो उसका कहना बिल्कुल सही है। अगर वो जो कहते हैं वो सही है तो ये भी सही है, लेकिन मेरी समझ से स्ट्रिक्टली अंतर्राष्ट्रीय लॉ के मुताबिक दोनों गलत है
जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। कैसर इमाम साहब, ये क्रीमिया के इलाक के मसले को एक और नुक्ते निगाह से देखा जा सकता है कि यूक्रेन में काफ़ी अरसे से अमेरिका और उसके इत्तेहादी सरगर्म थे, और उनका कोई ख़ास मंसूबा था जिसके लिए उन्होंने सरमायाकारी की थी और खुल के वहाँ पर मुदाखलत कर रहे थे। खुद अमेरिका की जो नायब वज़ीर ख़ारजा हैं विक्टोरिया नूलैंड, उन्होंने अभी हाल ही में इस बात का इंकशाफ किया है कि अमेरिका ने यूक्रेन में हुकूमत की तब्दीली के लिए $5 अरब की रकम खर्च की है। यकीनन यूरोप ने भी कुछ रकम खर्च की होगी, नेटो ने भी इसमें सरमायाकारी की होगी। तो मेरा ख्याल यह है कि क्रीमिया के इलहाक के ज़रिए रूस ने अमेरिका और यूरोप का जो भी मंसूबा था उस पर पानी फेर दिया है या उसमें मुश्किलात पैदा कर दी हैं, इसलिए इतनी बरहमी पाई जाती है मगरिब में और यूरोप में। इस बारे में आप क्या कहते हैं?
मैं समझता हूं कि ये बात बड़ी सही है कि क्रीमिया के इलाके पर रूस का कब्जा या रूस के साथ उसका जो अलहाक है उसने इनके जो मंसूबे थे उनको तो वाकई बहुत ज़्यादा मुतासर किया है। हो सकता है कि वो मंसूबे अब इतनी आसानी से बुरे कारना लाए जा सकें। मैं समझता हूं कि मगरबी ममालिक जो हैं वो इस इलाके में अपना जो असर रसूख है वो कायम करने के लिए तो गुज़श्ता कई साल से कोशिश कर रहे थे, और ये बात सही है कि उन्होंने वहाँ काफ़ी ज़्यादा सरमायाकारी भी की है जो लोगों को नज़र भी आती है, लेकिन वो इस बात को भूल गए थे कि यूक्रेन के मशरकी इलाके में और क्रीमिया के पूरे इलाके में रूसी बोलने वाले लोग जो हैं, रूसी नस्ल के जो लोग हैं, उनकी भारी अक्सरियत है और उनको उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनको ये एहसास नहीं हो सका कि ये लोग जो हैं वो आड़े आएंगे इनके मंसूबे में, और इसी वजह से क्रीमिया जो है वो अलग हुआ कि वो लोग रूसी बोलने वाले थे, उनके ताल्लुकात रूस से ज्यादा थे, उनकी रिश्तेदारियां रूस में बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो बुनियादी तौर पर वो समझते थे कि वो रूस ही का हिस्सा है। और अब जब वो इलाका जो है वो शामिल हो गया है रशिया में, तो मैं समझता हूं कि उनका जो मनसूबा था वो बहुत कमजोर हो गया है और शायद वो इतनी जल्दी अपने मनसूबे पर किसी तरह से कामयाब ना हो सके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जी। फौजिया शाह साहिबा, यूक्रेन में मगरिब के लिए ऐसा क्या था कि जिसके लिए मगरिब ने खुल के वहां मुदाखलत की और इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि सर्द जंग का? हाँ तो फौजिया जी, मुचकुंद दुबे साहब, जनाब यूक्रेन में ऐसा क्या है जिसके लिए मगरिब ने इतनी मुदाखलत की खुल के? 1991 से यूक्रेन में तब्दीली के लिए मगरिब कोशा है और भारी रकम खर्च की है और इस हद तक जाने के लिए तैयार है कि रूस से सर्द जंग का दौर दोबारा वापस आ जाए।
मेरा ख्याल
जी,
मेरा ख्याल जनाब यह है
जी
कि जो मगरिब के जो देश थे, मुल्क थे, खास करके अमेरिका
जी,
वो कोल्ड वार के खत्म होने के बाद भी उन्होंने कोल्ड वार को खत्म नहीं समझा। जब वारसा पैक्ट भंग हो गया तो उन्होंने नेटो को कायम रखा, कायम ही नहीं रखा बल्कि उसके मैंडेट्स को उन्होंने बढ़ाया, उसके जवाबदेहियों को उन्होंने बढ़ाया, और इसके अलावा उन्होंने हर तरह से कोशिश की कि रूस के सोवियत यूनियन के साथ जो मुक्त थे उनको कैसे खींच खींच के यूरोपियन यूनियन में और नेटो में शामिल किया जाए और किस तरह से उनकी पहुंच, उनकी फौजी पहुंच रूस की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ हो, और इसमें वो बहुत हद तक कामयाब हुए हैं क्योंकि अभी पुराने सोवियत यूनियन के 12 रिपब्लिक नेटो के मेंबर हैं
जी।
तो उनकी जो ये मंसूबा जो था वो 12 से उसकी खत्म नहीं हुआ
जी।
वो 12 में से और जो बचे हैं उनको भी वहां भी वो अपने साथ करके वहां भी रूस के बाउंड्री के पास अपनी फौज वो ले जाना चाहते हैं, और उनका शुरू से ही कोशिश रही है कि किस तरह से रूस को एक एक अदना ताकत की तरह के रूप में उसको के उसको बदल दिया जाए
जी।
और लेकिन ये दुनिया ऐसा नहीं है कि जहां एक ही ताकत रहेगी और एक ही ग्रुप के ताकत रहेंगे, और भी मुल्क हैं जिनको कि अपने इंटरेस्ट हैं, जिनको कि अपने देश के प्रति, अपने मुल्क के प्रति जिनको गरूर है, और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है। बहुत ऐसे एविडेंस हैं, सबूत हैं
जी,
जिससे ये पता चलता है कि अमेरिका का ये जो गोल, उनका उद्देश्य जो है, मंसूबा जो है, शुरू से रहा है इसको हासिल करने का, और इसीलिए उन्होंने जो कुछ भी कर रहे हैं यूक्रेन में इसी लिहाज से कर रहे हैं। और जब तक कि वो इन इरादों को छोड़ नहीं देते हैं
जी,
जब तक को वो इस नतीजे पर नहीं पहुंचते हैं कि और भी मुल्क दुनिया में अपनी प्रेस्टीज के साथ, अपने गरूर के साथ रह सकते हैं और उन्हें अपनी सिक्योरिटी के लिए जो इकदाम उठा रहे हैं वो उठा सकते हैं और एक तरह से महफूज महसूस करने का उनका हक है, तब तक इस मसले का हल कभी नहीं होगा। और ये मेरी समझ से असली चीज यह है कि मगरब के देशों को ये अपना रुख बदलना पड़ेगा और उनको ऐसे एक बिन मिलनी कौम का एक नक्शा उनके सामने रहना पड़ेगा जहां उनके अलावे और भी शक्तियां हैं और उन सारे शक्तियों के साथ मिलजुल कर एक एक वर्ल्ड ऑर्डर दुनिया में कायम की जा सकती है। उनको छोटा दिखाकर नहीं, उनके ताकत को बिल्कुल नष्ट नाबूद करके नहीं, उनको चारों तरफ से घेर के नहीं।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दुबे साहब। और इसी के साथ हम डॉक्टर कैसर इमाम के भी शुक्रगुजार हैं। बहरहाल अमेरिका और यूरोप रूस पर यूक्रेन में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि हकीकत यह है कि खुद अमेरिका और यूरोप ने रूस में मुदाखलत शुरू की, ख़ास तौर पर नवंबर 2013 से, जब से वहाँ हालात ज़्यादा ख़राब हुए, उनकी मुदाखलत ज़्यादा खुल के सामने आई जब सदर यानकोविच ने यूरोपीय यूनियन के साथ इक्तिसादी माहदे पर दस्तखत से इनकार कर दिया था। मुखालिफिन ने उन पर मुल्क को यूरोप से दूर करने और रूस के करीब ले जाने का इल्ज़ाम लगाया, लेकिन उनका कहना यह था कि ये माहदा मुल्क और कौम के मफाद के खिलाफ था, इसलिए उन्होंने इस पर दस्तखत से इनकार किया है। इससे कत नज़र कि यानकोविच सही कह रहे थे या उनके मुखालिफिन, लेकिन ये बात दुनिया के सामने है कि यूरोप और अमेरिका के लीडरान ने तसलसल के साथ यूक्रेन के दौरे शुरू किए, मुखालिफिन के साथ खुल के उन्होंने इजहार यकजहती किया, मुजाहरों में जाके उन्होंने तकरीरें की। जाहिर है कि इन सब को मुदाखलत के अलावा और किसी चीज़ का नाम नहीं दिया जा सकता है, और अगर हालात मज़ीद ख़राब होते हैं तो इसकी जिम्मेदारी भी अमरीका और यूरोप पर ही आ जाती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए हम आपसे इजाज़त चाहते हैं।